नमस्कार, मैं हूं पास्टर प्रशांत
और मैं हूं पास्टर जसलीन और हम आपके लिए लाए हैं हमारा प्रोग्राम जीवन की बातें जो पवित्र बाइबल पे आधारित है।
परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे, क्योंकि बाइबल में मेरे प्रियो ऐसा लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहता है। तो ये जो बातें आप सुनोगे, ये बातें आपके दिल में जब आप बैठेंगी, आप उनको चलना शुरू करोगे, आप ऐसा जीवन जियोगे, आप दौड़ोगे, आप परमेश्वर के आशीषित कहलाओगे। मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटूंगा, आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आप भले ही किसी भी रिलीजन के हो, इट डजंट मैटर, परमेश्वर सबका परमेश्वर है, परमेश्वर सबसे प्यार करता है। यदि आप उसके वचन पे मन लगाओगे, उसके वचन को सुनोगे, उसके वचन को अपने जीवन में एक्सेप्ट करोगे, उन पर चलोगे, वो आपका परमेश्वर होगा, आप उसके लोग कहलाओगे, आपके ऊपर वो आशीष परमेश्वर रिलीज करेगा जो उसके वचनों पर चलने वालों के ऊपर परमेश्वर देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा।
इस विषय में और आगे जाने से पहले हम एक गीत को सुनेंगे।
उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, मौजूद है। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। उन हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने मौजूद है वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है
और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन की बातें और मैं हूं पास्टर प्रशांत आपके साथ। आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं का निवेदन भेज सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं फ़ोन के द्वारा, आप अपनी परेशानियां मुझसे शेयर कर सकते हैं, केवल इसीलिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, परमेश्वर से आपके लिए इंट्रीट कर सकूं, परमेश्वर से आपके लिए मध्यस्थता कर सकूं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपकी परेशानी में आपकी सुधि ले और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर करे। परमेश्वर आपसे भी प्यार करते, इस बात को मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, मैं चाहता हूँ आप इस बात को जानें। और आप इस नंबर पे 0224923756 पे मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे एसएमएस कर सकते हैं और फेसबुक के द्वारा भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ये है 0224923756। एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्योंकि रेडियो है और ये लिख के नहीं आता आपके सामने, आपके केवल कानों में आता है। एक बार फिर से आप इसे ताकि नोट कर लो, 0224923756। मेरे चर्च का नाम है द चर्च ऑफ हिज प्रेजेंस एंड ग्लोरी, फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड। मैं हूँ पास्टर प्रशांत और मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है मुझे भेजें, मैं आपके लिए रेडियो पे भी प्रार्थना करूँगा। अब मैं आपको कहूँगा कि आप रेडी हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और जितना भी वचन आप सुनो परमेश्वर से कहो, मैं जो भी वचन सुनूं मैं उसको फल लेके आऊं, मैं आशीष पाऊं। आइए चलते हैं परमेश्वर के वचन।
लूक चैप्टर 15 वर्सेस 11 ऑनवर्ड्स। सो इसका मैं बैकग्राउंड दे देती हूं, जिन्होंने बाइबल में नहीं पढ़ा है आप घर जाके उसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर 15 वर्स 11 ऑनवर्ड्स में ऐसा लिखा है कि किसी मनुष्य के दो पुत्र थे और उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए, और उसने अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटे पुत्र ने सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश में चला गया और वहाँ पे कुकर्म में अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। तो छोटा पिता जाता है अपने बाप के पास और बोलता है कि जो आपकी प्रॉपर्टी में से मुझे हिस्सा चाहिए, और क्यों चाहिए कि वो मैं अपने प्लेजर के ऊपर उड़ा सकूँ। वो अपना पैसा इकट्ठा करता है, जो भी उसका भाग था, उसके दो पुत्र थे तो पिता ने आधा भाग उसको उसके हिस्से का दे दिया था, उसने लिया और दूर देश में चला गया। और वो किस मिशन के साथ निकला था वो संपत्ति लेके? खर्चने के लिए, ऑन द प्लेजर्स ऑफ फ्लैश। वो कोई मिशन ट्रिप पे नहीं निकला था, ना ही ये सोच के निकला था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बन के आऊंगा या मैं कुछ इन्वेस्ट करके आऊंगा। लेकिन उसने सोचा था मेरे पिता के पास तो बहुत पैसा है, और अगर मैं अपना भाग अभी ले लूं अपने पिता का, उसने ये नहीं सोचा कि पिता की यूजुअली जो प्रॉपर्टी होती है मरने के बाद आगे पास ऑन होती है, उसने सोचा तब तक का मैं वेट क्यों करूं, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का हिस्सा आज आना है मैं उसको आज लेता हूं और अपने आज के प्लेजर के ऊपर उड़ाता हूं। और वो चला गया दूर देश में, और बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसने पीछे मुड़ के देखा कि पिता का क्या हाल है या घर में क्या हाल चाल है। उसको एक धुन थी कि अपने सारे पैसों को अपने वर्ल्डली प्लेजर्स में उड़ा देने के लिए। और जब सारी संपत्ति उसकी खत्म हो गई तो क्या हुआ? वहां पे अकाल आ गया। और मैं जब इस बात के बारे में मनन कर रही थी तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे एक बात बोली कि जब एक व्यक्ति पाप में पड़ जाता है तो वो अपनी शरीर की लालसाओं को पूरा करने के बारे में ही सोचता है, वो कोई स्ट्रेटेजिक विजन के साथ आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ आज के बारे में सोचता है, वो कल दूरदर्शिता उसको परमेश्वर नहीं देता। वो ये सोचता है कि ये जो पैसा है इससे मैं चाहे शराब पी लूँ या किसी रेड लाइट एरिया में चले जाऊँ या कहीं पर भी उल्टा सीधा जो भी काम होता है वो कर लूँ। और ये वर्ल्ड भी आजकल हमें यही सिखाता है, लिव फॉर टुडे। अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे आसपास हम यही ट्रेंड देखते हैं कि लोग सोचते जो भी है आज है और इसके बाद कुछ नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर पे हम लोग विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि हम एक इटर्निटी को अपने माइंड में रह के इस जीवन को जीते हैं. वी डू नॉट जस्ट लिव फॉर टुडे बट वी लिव आवर लाइव्स इन अ वे विद इटर्निटी इन माइंड. क्योंकि हम जो भी आज करेंगे, जहां भी हम जाएंगे, हर एक चीज का एक कॉन्सिक्वेंस है. और जैसा जीवन आज आप यहाँ पे इस धरती पे जिएंगे, वो डिटरमिन करेगा कि आपकी डेस्टिनी क्या होगी और आप इटर्निटी कहाँ पे स्पेंड करेंगे. हालेलुया. जब वो अकाल में पड़ा तो उसको, उसमें बाइबल में ऐसे लिखा है कि वो कंगाल हो गया. कुछ ही टाइम में जो अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेके निकला था, वेल्थ लेके निकला था, और उस जमाने में यहाँ पे लिखा है दूर देश में जाना, मतलब काफी मनी उसको लगा होगा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए. वो निकला तो बहुत सारे पैसे के साथ था, लेकिन जब वो पाप में पड़ गया तो बाइबल में लिखा है कि वो कंगाल हो गया. उसने अपने प्लेजर्स तो पूरे करे, लेकिन वो पाप का कॉन्सिक्वेंस उसके जीवन में आ गया और वो कंगाल हो गया. और उसके बाद लिखा है कि उसका परिणाम क्या होता है. इसमें लिखा है, इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा और उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए उसे भेजा. और वो चाहता था कि उन फलियों को जिनसे सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था. उसका सिचुएशन देखिए, जो इतना मनी लेके निकला वो आज सुअर चरा रहा है. और खाने में क्या है, जो फलियां जो सुअर की भी जो छोड़ देते थे सुअर, वो उससे अपना पेट भर रहा था. जस्ट इमेजिन, अ पर्सन ऑफ वेल्थ अपना भाग लेके, यंग मैन निकलता है, पाप में पड़ा, कंगाल हो गया, और ये स्थिति आ गई कि सुअरों की जूठन, सुअर की चूर चार वो खा के अपना पेट भर रहा है. और वर्स 17 में ऐसा लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तो कहने लगा. जब वो अपने आपे में आया, क्योंकि उससे पहले पाप की धुन उसको सवार थी, वो अपना आपा खो चुका था. और वो अपने आपे में कब आया, जब वो सुअर के साथ सुअर चरा रहा था और उसके खाना खा रहा था. तब उसने बोला, मेरे पिता के कितने मजदूर हैं जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं. मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है. अब इस योग्य तो नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले. वो जब अपने आपे में आया तो उसने अपने आप को हम्बल करा, अपने दिल से उसने रिपेंटेंस करी. और उसका यहाँ पे उसने पिता से पहले ये बोला कि मैं जानता हूँ कि मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप करा है. जब हम पाप में पड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम शायद अपने सिर्फ फैमिली के अगेंस्ट में पाप कर रहे हैं, या अपने रिलेशन के अगेंस्ट में, या कम्युनिटी के अगेंस्ट में. जब कोई भी व्यक्ति पाप में पड़ता है, वो सबसे पहले स्वर्ग के विरोध में पाप में पड़ता है. और उसको ये बात रियलाइज हो गई कि जो मैं पाप में पड़ा हूँ, मैंने जो अपने जीवन अपने टर्म्स पे जिया है, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है. और वो सोचता है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं जिनके पास अच्छा खाना है और ज़रूरत से ज़्यादा रोटी है. और वो जानता है कि उसने अपना सब कुछ ले लिया था, अपनी इनहेरिटेंस ले ली थी. तो वो बोलता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाऊँगा और बोलूँगा कि मैं तुझे पिता कहलाने का तो हक खो चुका हूँ, या तेरा बेटा कहलाने का हक खो चुका हूँ, लेकिन एक मजदूर की तरह ही तू अपने घर में मुझे पनाह दे दे. वर्स 20 में उसका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, जब वो उठा और अपने पिता के पास चला गया. आपके और मेरे जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट था, जब हम अपने पापों में थे, हम नाश हुए जा रहे थे. हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट तब था जब हमने यीशु मसीह को अपना पिता बोला और यीशु मसीह की ओर हमने अपने पाओं को बढ़ाया. और जिस दिन वो अपने पिता के घर की ओर चल पड़ा, और जिस दिन आप अपने पिता के घर की ओर चल जाते हैं, आपकी लाइफ सेम नहीं रहती, आपकी डेस्टिनी सेम नहीं रहती, और आपसे आने वाली जेनरेशंस सेम नहीं रहती. हालेलुया. और वो उस टर्निंग पॉइंट में जाने से पहले उसने अपने आप को नम्र किया, वो रिपेंटेंस के साथ अपने पिता के साथ सामने जाया गया. और आप जानते हैं कि फॉरगिवनेस कहां से आती है? फॉरगिवनेस यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आती है. और वो बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब हम उसको सीख करते हैं, उसके चेहरे की ओर देखते हैं, तब वो फॉरगिवनेस आती है. व्हेन यू सीक हिम, जब एक बेटा या बेटी अपने पिता के पास जाता है, फादर्स डे है, यू नो, चिल्ड्रन मेक मिस्टेक्स एंड दे कम, और उनकी आंखें जब आपकी आंखों की ओर लगती हैं, और वो जो प्यार उमड़ता है उससे एक पिता के दिल में दया आती है. अगर आपका बच्चा कोई गलती करता है और वो रोते हुए माफी मांगता है, और जब वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, डैडी आई एम सॉरी, एक पिता के दिल में दया आती है और वो उसको फॉरगिव करता है. वैसे ही जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, बहुत सी बार हम गिर जाते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन जब हम उसको सीख करते हैं, उसके चेहरे की ओर देखते हैं और बोलते हैं, पिता मुझसे गलती हो गई, तू मुझे माफ कर, वहां से फॉरगिवनेस की शुरुआत होती है. एंड व्हेन यू सी द आईज ऑफ अ लविंग फादर, एवरीथिंग चेंजेस. नो मैटर व्हाट यू आर फेसिंग इन लाइफ, जब आप एक बच्चा अपने पिता को देख लेता है, वो जानता है माय डैडी कैन हैंडल इट. कल मैं अव्या से बात कर रही थी रिटर्निंग, और उसने कुछ टॉय के लिए बोला कि यू नो आई वांट टू बाय सम टॉय, और शी सेड एंड आई एम लाइक, मेरे पास पैसे नहीं है, बट डैडी हैज मनी, मम्मी डैडी हैज मनी, ओके. एंड देन वो बोली, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, आई जस्ट वांट टू कुक फॉर यू एंड डैडी, यू नो. तो मैंने कहा, अव्या यू हैव गॉट टू डू समथिंग. एंड देन एड्रियल ने बोला, अव्या यू नीड मनी, नो डैडी हैज अ लॉट ऑफ मनी, आई कैन जस्ट यूज हिज वॉलेट, यू नो. तो उसके पास वो कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे किसी भी बात की जरूरत पड़ेगी तो मेरा पिता खड़ा है और वो मुझे मेरी जरूरतों को पूरा करेगा. और हमारा जो स्वर्गीय पिता है, जिसके पास हेवन की रिसोर्सेज हैं, हम कितनी बार हम अपना विश्वास से डगमगा जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हम कौन है, हम उसके बेटे और बेटी है. जस्ट पॉज फॉर अ मोमेंट, एक मिनट के लिए सोचे कि आपका पिता कौन है. वो स्वर्गीय परमेश्वर जिसने हर एक चीज बनाई है, उसने हमें स्लेव नहीं बोला, उसने हमें क्या बोला है, अपना बेटा और बेटी. और जब वो बेटा और बेटी बोलता है तो हमें वो स्वर्गीय अधिकार भी देता है, वो हमारे हमें अपना वारिस बनाता है. इस वर्ल्ड में, अगर वर्ल्ड की सिस्टम के हिसाब से आप सोचे, जो जैसे किसी कंट्री का किंग है, लाइक इंग्लैंड का किंग है, उसके बेटे को पता है कि इसके बाद सब कुछ मेरा है, वो पावर, वो अथॉरिटी, जो प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. तो हमारा परमेश्वर तो स्वर्गीय परमेश्वर है, जिसके पास ना केवल एक छोटा सा किंगडम है, लेकिन पूरा वर्ल्ड और पूरा यूनिवर्स का किंगडम जो रूल करता है, वो आपका और मेरा पिता है. हालेलुया. आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आप उस स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं. हालेलुया. वो परमेश्वर जिसको हाईएस्ट ऑफ हाई हेवेंस कंटेन नहीं कर सकती, वो परमेश्वर आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी कहलाता है. और वो कब कहलाता है? जब हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह को अपनाते हैं हमारे जीवन में, वो हमारी लाइफ को, हमारी डेस्टिनी को चेंज करने वाला परमेश्वर है. और वो चीजें जो हमें पहले बॉदर करती थी कि क्या होगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, हमारे फाइनेंस कैसे पूरा होगा, क्या आपको लगता है कि एक किंग का बेटा या बेटी इन सब चीजों की परवाह करेंगे? क्या वो सोचेंगे कि मेरा खाना कहां से आएगा? एक किंग का बेटा या बेटी ये सोचेंगे कि मुझे खाना या पानी कहां से मिलेगा, या मेरा कल प्रोवाइड कौन करेगा? नहीं. तो हम क्यों सोचते हैं? आपका और मेरा परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है. वो मछली के पेट में से जब वो कॉइन्स निकाल दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है. वो मुहैया कराने वाला परमेश्वर है और वो आपके लिए मुहैया कराएगा. जब एक अर्थली फादर को पता है कि अपने बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या गिफ्ट देना है, तो वो स्वर्ग के पिता क्या वो नहीं जानता कि आपको किस बात की आवश्यकता है? बाइबल में लिखा है आपके मांगने से पहले ही वो जानता है कि आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, और वो हर एक चीज़ को पूरा करता है। लेकिन हमें धीरज के साथ बाट जोते रहना है, अपने विश्वास को कम नहीं होने देना और उसकी ओर देखते रहना है, अपनी आँखें स्वर्ग की ओर लगाए रखना है। और जब हमें लगता है कभी कभी लेट हो रहे हैं आंसर्स, कभी परमेश्वर लेट नहीं होता, परमेश्वर इज ऑलवेज ऑन टाइम। एंड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट वेटिंग पीरियड, जब आप वेट कर रहे हैं अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर से ना हटाएं, अपने मुंह को खोल के अंगीकार करें कि आपका ब्रेक थ्रू आ रहा है और परमेश्वर आपका उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी चाहता है, यू नो ही इज ऑल इन और ऑल आउट। क्योंकि बाइबल में लिखा है वो लूक वॉर्म लोगों को पसंद नहीं करता, या तो आप आग से भरे हुए हैं या बिल्कुल ठंडे हैं, है ना। और वो परमेश्वर हमारी लाइफ में सेकंड प्लेस डिजर्व नहीं करता, थर्ड प्लेस डिजर्व नहीं करता, वो हमारे लाइफ में फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है। हालेलुया। और आज परमेश्वर को बोले, परमेश्वर अपने जीवन का हर एक हिस्से में मैं आपको फर्स्ट प्लेस रखता हूँ और मैं आपको प्रायोरिटी मानूंगी अपने पूरे पूरे जीवन भर। आगे लिखा है जब वो उठकर अपने पिता के पास गया, जब वो चल ही रहा होगा उसके दिमाग में कितने डाउट्स और क्वेश्चंस होंगे कि मैंने अपनी संपत्ति तो उड़ा दी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, मैं भिखारियों से भी बदतर जीवन जी रहा हूँ। और वो जब उस सफ़र में चल रहा था, कितने डाउट्स और क्वेश्चंस के साथ चल रहा होगा। और यहाँ पर लिखा है कि अभी वो दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देख कर तरस खाया और दौड़ के गले लगाया और बहुत चूमा। दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हेवनली फादर। जब हम उसकी ओर चलते हैं, जब हम उसकी ओर चलने लगते हैं, तो उस पिता ने उसको दूर ही से देख लिया। इसका मतलब वो वेट कर रहा था कि मेरा बेटा कब वापस आएगा, और उसने ये वेट नहीं करा कि बेटा घर तक आया, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो पिता दौड़ के, धीरे धीरे चल के नहीं गया या तेज भी चल के नहीं गया, वो दौड़ के अपने बेटे के पास गया, उसको देखा, उसने तरस खाया और उसको चूमा। God accepts us the way we are, you know, no matter what we've been through, no matter how hard our life has been, no matter how many questions we have, कितने डाउट्स, कितने फियर, कितना एंगर या हेट्रेड या कोई भी इमोशन से आप चल रहे हो, जब आप अपने पिता के घर में आते हैं, ही एक्सेप्ट्स यू एंड ही वेलकम्स यू। वो दूर ही से देख लेता है और वो खुश होता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे घर में आए हैं। हालेलुया। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, उसने वहीं पे पिता ने उसकी बात को काट दिया और दासों से क्या कहा, झट से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। उस पिता ने देख लिया वो किस हालत में आया है और अपने नौकरों को उसने बोला कि उसके वस्त्र जो पुराने थे, जो पाप वाले वस्त्र थे, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, ही क्लोथ्स यू विद रॉयल रोब्स, वो आपके पुराने चिथड़े पुराने कपड़े हटा देता है, आपके पाप वाले मैले जीवन को हटा देता है और एक रॉयल रोब वो आपको देता है। और उसने उसको रिंग दी, जो रिंग का सिग्निफिकेंस है वो एक अथॉरिटी है, वो अपनी अथॉरिटी, बाप होने की अथॉरिटी, क्योंकि वो वहाँ पे बोल रहा था कि मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाऊँ, उसने बोला इसको रिंग पहनाओ, जो कि अथॉरिटी को दर्शाता है। हम बहुत सी बार सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं कि हम परमेश्वर की सेवा करें या परमेश्वर हमारा अपना पिता बोले, लेकिन परमेश्वर बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है और मैं तुझे अपनी अथॉरिटी देता हूँ। हालेलुया। और उसने उसके पाँव में अच्छे जूते पहनवाए ताकि अब वो पाप के मार्गों पर ना चलकर परमेश्वर के मार्गों पर चले। उसने नए जूते, नए कपड़े और अपनी अथॉरिटी उसको दी। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, वो बोलता है, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र तो मर गया था,
वो फिर जी उठा है, खो गया था अब मिल गया है और वह आनंद करने लगे। हालेलुया। वो बाप को पता था, वो सोच रहा था शायद उसका बेटा चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने उससे एक बार नहीं पूछा कि तेरे पास कुछ पैसे बचे हैं या नहीं बचे। उसने उसके पाप के बारे में वाद विवाद नहीं करा, पर एक्सेप्ट किया। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, परमेश्वर दोनों हाथ फैला के आपको अपने लाइफ में एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार उसको क्रूस पर चढ़ाएं, बल्कि हम अपने जीवन में उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें और जैसा वो चलाना चाहता है, जिन मार्गों पे वो चाहता है हम चलें, हम उसके पीछे पीछे हो लें। हालेलुया। आज एज अ फादर ही वेलकम्स यू इन हिज प्रेजेंस। नो मैटर व्हाट योर एक्सपीरियंस हैज बीन इन लाइफ, नो मैटर व्हाट यू हैव बीन थ्रू, ही एक्सेप्ट्स यू एंड ही सेज आई लव यू। वेलकम होम, वेलकम होम, वेलकम टू योर हाउस, welcome to the kingdom of God and welcome in the presence of the Almighty. और जब वो मेरा पिता हो जाता है, मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर जो है अब यीशु मसीह वास करता है, दुनिया मेरा क्या बिगाड़ सकती है, क्योंकि वो स्वर्गीय परमेश्वर जब आपका पिता है तो वो स्वर्गीय प्रोविजन, स्वर्गीय प्रोटेक्शन और स्वर्गीय ब्लेसिंग्स भी आपका हिस्सा है। हालेलुया।
मैं हूँ पास्टर जसलीन और आप सुन रहे हैं जीवन की बातें प्रोग्राम 104.6 प्लैनेट एफएम पर। हमारा चर्च है फेथ फेलोशिप ऑफ गॉड चर्च एंड यू कैन जॉइन आवर सर्विस जो कि एवरी संडे 2 PM होती है 2 सटन क्रेसेंट पापा टोई टोई में। एंड वी वेलकम ऑल ऑफ यू दोज वर लिसनिंग टू दिस प्रोग्राम टू कम एंड जॉइन अस एवरी संडे। और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और हम आपके साथ खड़े होंगे। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, facebook.com/ffgcnz पर, और ffgcnz YouTube पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजने के लिए आप हमें इस नंबर पर टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं 0224923756। द नंबर इज 0224923756।
और आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 0224923756 पर, 0224923756। God bless you. You are blessed in Jesus' name.
ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर